उर्वशी का मूल्यांकन। पिछले अध्यायों में उर्वशी की सर्वांगीण आलोचना को भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखा गया है। विषय के आदि, मध्य अथवा अंत में कुछ निष्कर्ष तथा मूल्यांकन भी यथास्थान प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु फिर भी अंत में मूल्यांकन जैसा एक स्वतंत्र अध्याय जोड़ना आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना न तो लेखक का हिम्मत ही पाठकों के सम्मुख आ पाता है और न ही कवि की कृति का नीर क्षीर विवेक हो पाता है। आज उर्वशी को प्रकाशित हुए कई वर्ष हो चुके हैं और इन वर्षों में भिन्न भिन्न समीक्षकों ने अपनी मति के अनुसार इसके विषय में अपने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। पत्र पत्रिकाओं में उर्वशी के मूल्यांकन की गति पिछले वर्षों से काफ़ी तीव्र रही। इस तीव्रता को दृष्टिगत रखकर सबसे पहला निष्कर्ष तो यही निकलता है कि आधुनिक काव्यधारा में उर्वशी अपने ढंग की असाधारण कृति है। इसके प्रकाशन से एक बार तो संपूर्ण आलोचक जगत ही की दृष्टि चकाचौंध हो गई। दृष्टि के चकाचौंध होने का मूल कारण था पुरुष एवं नारी के चित्त में अवस्थित कामानुभूति की सर्वांगीण व्याख्या। कवि दिनकर ने पुरुर्वा तथा उर्वशी की कथा का पौराणिक आधार लेकर इस कामानुभूति को अभिव्यक्त किया है। कुछ आलोचकों का ऐसा मत है कि दिनकर जी ने उर्वशी या पुरुर्वा का कथानक ग्रहण करके गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, मगर आलोचकों के ऐसे वक्तव्य से उनकी मंद एवं संकीर्ण बुद्धि का आभास होता है। उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं कि आज तक जितनी ही महान काव्यकृतियां हैं उन सब का वर्ण विषय बड़ा महान, प्रख्यात, आदर्श तथा विश्वसनीय है, क्योंकि काव्य के साधारणीकरण में उपरोक्त तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पित पात्रों का आधार काव्य को इतना सशक्त एवं शाश्वत नहीं बना सकता जितना ऐतिहासिक आधार बना सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि काम मानव की मूल प्रवृत्ति है और मानव प्रवृत्तियों पर काल का बंधन नहीं होता। कथा या पात्र तो उस मूल अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र होते हैं, मगर फर्क इतना है कि प्रख्यात कथा की ठोस भित्ति पर मूल चित्रवृत्तियों के चित्र जितने सुंदर उभर कर आते हैं उतने उत्पाद्य कथा वस्तु में नहीं उभर पाते। उर्वशी पुरुर्वा के ऐतिहासिक अथवा पौराणिक स्थूल व्यक्तित्व को यद्यपि कवि ने ग्रहण किया है, लेकिन काव्य में उनका व्यक्तित्व एवं घटनाक्रम अविधेयार्थ को ही प्रस्तुत करता है। मूल अभिप्रेत काम की व्यंजना नहीं करता। ये पुरुर्वा उर्वशी तो मूल भाव काम प्रेम के साधन मात्र हैं, पर्याय नहीं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उर्वशी काव्य का आधारभूत विषय पुरुर्वा उर्वशी की कथावस्तु नहीं अपितु कामानुभूति है। काम मानव की प्रबलतम वृत्ति है। नर नारी के स्वाभाविक संसर्ग में प्रेम का पानी चढ़ जाने पर यही काम वृत्ति एक पवित्र कमनीय संबंध का रूप ग्रहण कर लेती है, किंतु उर्वशी का कवि उसे सहज मानव वृत्ति के रूप में चित्रित करने का इच्छुक है। उसने आग्रह सहित यह किया भी है। काम की सहज मानव वृत्ति को कवि ने केवल शरीर अथवा जैव धरातल तक ही सीमित नहीं रखा अपितु उसे आत्मा के ऊर्ध्वलोक पर समासीन करने का प्रयास किया है। कवि ने अपने काव्य की भूमिका तथा उर्वशी काव्य में इस बात का दार्शनिक विवेचन किया है कि प्रेम के द्वारा जीव उच्च धरातल पर सरलता से पहुंच सकता है, जबकि योगादि के मार्ग सूर्य के समान हैं जो साधक को चौंधिया देते हैं। परिणाम यह होता है कि वे दिग्भ्रमित एवं पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अतः नर नारी के प्रेम की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि दिनकर ने अपनी भूमिका में कहा है, देश और काल की सीमा के बाहर निकलने का एक मार्ग योग है, किंतु उसकी दूसरी राह नर नारी के भीतर प्रेम के भीतर से ही निकलती है। प्रेम की एक उदात्तकृत स्थिति यह भी है जो समाधि से मिलती जुलती है। यद्यपि कवि दिनकर ने यह कोई मौलिक विचारधारा प्रस्तुत नहीं की है, वेदों में योगादि द्वारा प्राप्त ब्रह्मानंद को उस आनंद के समकक्ष बताया है जो परिरंभण के अंतिम क्षणों में नर नारी को प्राप्त होता है, मगर प्रेम तथा योग का अपने ढंग से विस्तृत उपस्थापन मौलिक तथा प्रशंसनीय है। दिनकर जी के अनुसार वस्तुतः जिस क्षण एक नर अथवा नारी की कामवृत्ति एक नारी अथवा नर में केंद्रित हो जाती है, उसी क्षण प्रेम की पावनता रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि के अनुभव गम्य सीमाओं में बंधने लगती है। यह कामवृत्ति के उदात्तीकरण का प्रथम सोपान है। नर नारी का परस्पर शारीरिक एवं नयनों के भीतर झांकने वाला वह आत्मिक प्रेम सौंदर्य कामवृत्ति की भावना को स्थैर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे यौन स्थिरण कहते हैं। इस स्थिरण के पश्चात धीरे धीरे मानस की वृत्तियां उदात्त होती जाती हैं। जैव आकर्षण के प्रति उसका विमोह हो जाता है और उसे ऐसा आभास होने लगता है जैसे शरीर से परे बहुत कुछ है जिसे मुझे प्राप्त करना है। यह प्राप्त करने की जिज्ञासा ही ऊर्ध्वलोक का बंद द्वार है जिसे प्रेम के मार्ग से और साधना की शक्ति से प्रेमी साधक खोलने में समर्थ हो जाता है। उर्वशी पुरुर्वा के माध्यम से कवि ने प्रेम के इस चरम विकास को 5 सोपानों में बांटा है। पहला यौन आकर्षण, दूसरा यौन स्थिरण, तीसरा शारीरिक कामानुभूति, चौथा महत्तर तृषा, पांचवा उदात्तीकरण। जब उर्वशी कुबेर के यहाँ से सखियों के साथ लौट रही थी तब उर्वशी को एक दैत्य ने उठा लिया था। पुरुर्वा ने उसे मुक्त कराया। ऐसे क्षण में दोनों के परस्पर दर्शन से यौनाकर्षण पैदा हुआ। उर्वशी इंद्रलोक में तो पुरुर्वा धरती पर अपने प्रेम तत्व के व्यक्ति इच्छित वस्तु के अभाव में करता रहा। उर्वशी का समय तो काटे नहीं करता था, ऐसा लगता था जैसे समय का कोई अजगर अपने नीचे उसे दबाकर बैठ गया है। इस प्रकार जहां दोनों के परस्पर दर्शन में यौनाकर्षण उत्पन्न हुआ था, वहां अभाव के कारण विरह में तपने से यौन स्थिरण भी हो जाता है। यौन स्थैर्य को कवि ने महारानी औष्णरी के सखी मदनिका के मुख से इस प्रकार कहलवाया है। इसमें क्या आश्चर्य प्रीत जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। नर नारी के प्रेम की जड़ जम जाने के कारण परस्पर मिलने की आकांक्षा होती है। वे एक दूसरे में साथ जाना चाहते हैं। शारीरिक कामानुभूति की इस भावना का कवि ने बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। उर्वशी देवलोक की अप्सरा है, जहाँ शीतलता का निवास है, अतः धरती पर आकर वह शीतलता को छोड़कर पुरुष के उत्तप्त भुजाओं के पास में बंधी रहना चाहती है। यद्यपि पहले पहल पुरुर्वा की भी यही स्थिति थी, उस शारीरिक कामानुभूति को कवि ने बड़े हृदयग्राही शब्दों में व्यक्त किया है, यथा उफ्री यह माधुरी और ए अधर विकच फूलों से, पर्वत की आश्रय शक्ति के आकुल आलोड़न में। शारीरिक स्तर पर किया गया यह परिरंभण आलिंगन पास तथा तो काम के लिए अधिक समय तक नहीं चल पाती। मनुष्य का चित्त इससे भी आगे पहुंचना चाहता है। कारण परिरंभणावस्था में प्राप्त क्षणिक आनंद को शाश्वत आनंद की भूमि पर ले जाना चाहता है। अतः प्रेमी या प्रेमिका शारीरिक स्तर के प्रति विरस होकर ऊर्ध्वलोक की ओर अग्रसर होना चाहता है। इस प्रकार प्रेम की यह तीसरी सोपान जीवन को महत्तर तृषा की ओर अग्रसर करती है। उर्वशी को पा लेने के पश्चात पुरुर्वा को भी आभास होता है कि शरीर योग करने के पश्चात भी कोई ऐसी आग है जो मुझे एक पल भी जीने नहीं देती और सदा अशांत किए रहती है। इस प्रकार घोर अंतर्द्वंद की स्थिति में आधि भौतिक सुख के पर्दे फटने लगते हैं और चरम सत्य का मंद मंद प्रकाश जीव को आवृत्त कर लेता है। इंद्रिय दर्शन समाप्त हो जाता है और चित्त उद्दात एवं निष्काम होकर चिंतन की भूमिका में चरण रखता है। चिंतन बुद्धि का कर्म है, प्रेम रक्त भाव अथवा हृदय का। अतः चिंतन के क्षणों में कामानुभूति समाप्त है और चित्तवृत्ति सूक्ष्म तत्वग्राही एवं कुछ निरसी होने लग जाती है। ऐसे स्थलों पर कवि को विशेष सावधान होकर अपनी काव्यकला के दाव दिखाने पड़ते हैं, जिससे विषय में निरसता न आने पाए। कवि का प्रमुख दाव है चित्रात्मकता। रेति काल में चित्रात्मकता की जो प्रवृत्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर आधुनिक काल में आते आते क्षीण हो गई थी, उसे दिनकर ने पुनः जागृत किया है। यहाँ तक कि दिनकर जी तो चित्रात्मकता को कविता की सबसे बड़ी कसौटी मानते हैं। इस प्रकार कवि ने जो सिद्धांत उपस्थित किया है, उसे व्यवहार मिलाकर कथनी और करनी का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उद्दात्तीकरण की स्थिति में पुरुर्वा द्वारा कहे गए चित्रात्मक शब्द काम विषयक संस्कारों का सार है। देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं, सीमित है रुधिर त्वचा तक। यह सीमा प्रसरित है मन के गहन गुह लोकों में, जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आका करती है, और पुरुष प्रत्यक्ष विभासित नारी मुखमंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है। इस अवस्था में पुरुर्वा उर्वशी अपनी देह सीमा को छोड़कर शाश्वत नर नारी का रूप धारण कर लेते हैं। दिनकर जी ने काव्य कला में एक नए दृष्टिकोण को लेकर काम की वृत्ति को उभार कर रख दिया है। मानव वृत्ति में काम की जो मूल भावना निवास करती है, उसका निश्चल रूप से अभिव्यक्तिकरण ही कवि का पावन उद्देश्य रहा है, जिसमें कवि पूर्ण सफल रहा है। अब प्रश्न उठता है, उर्वशी काव्य में रसास्वाद किस कोटि का है? उर्वशी श्रृंगार रस प्रधान रचना है। वे दृश्य जहाँ पर कवि को रसिक्त दृश्यों का चित्रण करने का अवसर मिला है, अथवा जहाँ प्रकृति का आलम्बन एवं उद्दीपन रूप में चित्रण करने का अवसर मिला है, वहाँ कवि की लेखनी को रसाविष्ट होने का प्रधान संबल मिला है। प्रथम अंक में धरती और स्वर्ग की तुलना, द्वितीय अंक में औष्णरी की मनोदशा, तृतीय अंक में उर्वशी पुरुर्वा का प्रेम संवाद, चतुर्थ अंक में पति पुत्रहीन उर्वशी की विवशता तथा सुकन्या का नारी जाति के प्रति संदेश एवं पतिव्रता स्त्री के महत्व का व्याख्यान, तथा पांचवें अंक में उर्वशी के इंद्रलोक चले जाने पर पुरुर्वा के द्वारा व्यग्र होकर कहे गए वीर रसपूर्ण अत्यंत सुंदर एवं रसाविष्ट करने वाले स्थल हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो रसचर्वण में बाधक सिद्ध होते हैं, जैसे तीसरे सर्ग में उर्वशी द्वारा कहलाया गया अद्वैतवाद का दार्शनिक व्याख्यान, तथा पांचवें अंक में के अंत में औष्णरी तथा सुकन्या का संवाद। अंतिम सर्ग के भाग ने तो पाठक के साधारणीकरण में बड़ा भारी व्यवधान पैदा कर दिया है। भाषा की दृष्टि से कवि दिनकर अग्रणी है। इनकी भाषा बड़ी जीवंत एवं सशक्त है। उर्वशी में शब्द चित्र इतने कमाल के हैं कि पाठक का मन मयूर नाच उठता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शब्द चित्रों के बल पर उर्वशी साहित्य क्षेत्र में अमर होने की सामर्थ्य रखती है। दिनकर जी की काव्य साधना को चित्रात्मकता का वरदान प्राप्त है। आज की नई कविता उर्वशी से इस विषय में बहुत कुछ ग्रहण कर सकती है। परंतु इतना होने पर भी स्थान स्थान पर कवि की शब्दावली बड़ी दुर्बोध हो गई है। तत्सम शब्दावली की अतिशयता के कारण कहीं कहीं पाठक भाव का साधारणीकरण न होने पर खींच उठता है, जबकि स्वयं कवि अपनी कविता की भूमिका नामक पुस्तक में यह कह गए हैं कि कविता की भाषा आम फहम होनी चाहिए। यहाँ पर कवि कथनी और करनी पर खरे नहीं उतरे। उर्वशी में कवि द्वारा प्रदत्त एक और सबसे बड़ी देन है कि उसमें सूक्तियों का अत्यंत मनोरम आभासिक एवं लाक्षणिक प्रयोग है। सुभाषितों का ऐसा मनोरम प्रयोग हिंदी के बहुत कम कवियों में मिलेगा। अंत में यह कि कवि का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है कामानुभूति की काव्यमय अभिव्यक्ति, उसका उदात्तीकरण और आधार है उर्वशी पुरुर्वा का प्रेम। समाधान कवि के पास नहीं है, कारण दिनकर द्वंद्व का कवि है, संघर्ष एवं समस्या को उत्पन्न करने वाला कवि है, समाधान का कवि नहीं। समाधान कार्य कवि बुद्धिजीवी आलोचकों पर डाल देता है, उसका कारण है केवल समस्या को उभार कर रखना। उर्वशी में भी कवि ने ऐसा ही किया है। प्रेम के विभिन्न पहलू कवि ने पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन्हें पाठक जिसमें चाहे अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ले, कवि को कोई ऐतराज नहीं होगा। निश्चय ही यह गीत नाट्य काव्य विकास की एक नवीन सोपान है। समाप्त। और उर्वशी पूरी तरह समाप्त।